तो अभी दो दिन पहले हम सबने होली मनाई। फॉर्मली जो ऑफिशियल होली तो दो दिन पहले था, तो पर आज हम यहाँ अपने आर्य समाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मनाने से पहले थोड़ी समझते हैं होली क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो होली अनेक सारे फेस्टिवल्स का एक कॉम्बिनेशन है। अलग अलग जितने भी हमारे त्योहार होते हैं तो वो अलग अलग समय पर अलग अलग कारण उनके साथ जुड़ जाते हैं। शुरुआत में तो कोई एक पर्टिकुलर कारण किससे कोई फेस्टिवल होता है, बाद में हजारों सालों की हिस्ट्री में नई नई और हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल सोशल कॉजेस उसके साथ जुड़ जाते हैं। फेस्टिवल तो अपने आप में लाइफ को सेलिब्रेट करना होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम मनुष्य हैं और हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से खुश नहीं होते हैं, वो हमारे बेसिक्स होते हैं। उसके बाद भी हमारा इमोशंस है, माइंड है, और उसको हमेशा एंटरटेन की जरूरत है। व्यक्ति मेहनत करता है पर बीच बीच में उसको रेस्ट की जरूरत है, इसीलिए दो त्योहारों को संस्कृत में पर्व कहते हैं। पर्व का मतलब जो गांठ होता है, जैसे आपकी बांस या बैम्बू ट्री में या सुगर केन में देखते हैं बीच बीच में जो गांठ होता है उसको भी पर्व कहते हैं, मतलब जो ग्रोथ होता है थोड़ी देर के लिए एक पॉइंट पर रुक जाना, जिसका मॉडर्न वर्जन, ऑल्दो इट्स नॉट मॉडर्न, इट्स ए क्रिश्चियन वर्जन, जिसमें हम संडे को छुट्टी करते हैं, है ना। तो ये संडे को भी जो होता है वो एक क्रिश्चियन रिलीजियस कॉज है उसके पीछे। जैसे प्राचीन काल में हमारे हर हफ्ते अष्टमी और प्रतिपदा के दिन छुट्टी हुआ करता था। तो डे कोई भी हो, मैसेज ये है कि जब व्यक्ति काम करता है तो उसको बीच में रेस्ट चाहिए, एंटरटेन चाहिए। और फेस्टिवल वही एंजॉय करते हैं जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, जो 24 घंटे बैठे रहते हैं निकम्मा, उनको तो कुछ फेस्टिवल के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 365 दिन एक होता है। तो जब आप मेहनत करते हैं तो यू नीड रेस्ट, आप वैकेशन में जाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप एंजॉय करते हैं। तो यही पर्पस, यूनिवर्सल ह्यूमन पर्पस यही है कोई भी फेस्टिवल हो। और मजेदार है, हमारे जो हिंदू ट्रेडिशन में जितने भी फेस्टिवल आप देखेंगे, ठीक है उसके साथ हम काफी सारा आजकल रिलीजियस चीजें जोड़ देते हैं, पर बड़ी इंटरेस्टिंगली अगर आप उसकी शुरुआत देखेंगे, 70% जितने भी हमारे यहां त्योहार फेस्टिवल है वो रिलीजियस, प्राइमरीली रिलीजियस नहीं है। ठीक है, हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, वो हमारी अपनी श्रद्धा है, बट वो फेस्टिवल इटसेल्फ जो रिलीजियस नहीं है। वो दिवाली हो, होली हो, और ऐसे सैकड़ों फेस्टिवल ऐसे होते हैं। तो होली के बहुत सारे कारण होते हैं, तो हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे जो भी 10-15 मिनट में। पहली चीज होती है होली होता कब है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन है, मीन्स महीने में दो पक्ष, दो हाफ होते हैं, डार्क हाफ, ब्राइट हाफ। ब्राइट हाफ की जो एंड है वो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के अगले दिन जो होता है हम, तो उसी को कहते हैं प्रतिपदा, तो उसी को होली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और फाल्गुन मास क्या है, जो इंडियन कैलेंडर में जो 12 महीने होते हैं वो वसंत ऋतु का आगमन है, द स्प्रिंग सीजन जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। तो पहली चीज है कि प्राचीन काल में ना हमारे भारत में जो भी कुछ खेती बाड़ी, एट द एंड ऑफ द डे प्राचीन जो सिविलाइजेशन है दुनिया में कहीं भी हो वो तो खेतीबाड़ी पर डिपेंड करता था। तो जब भी खेत में फसल आते थे या हार्वेस्ट होकर के आपके यार्ड में आते थे उसको सेलिब्रेट किया जाता था। और सेलिब्रेट करने का तरीका वो ग्लास से ग्लास टकराने वाला नहीं, बस सेलिब्रेशन की तरीका होता था कि कुछ भी आया उसको पहले भगवान को अर्पित करो। तो पहले जमाने में कैसे अर्पित करते थे, ऑफर करते थे, तो यज्ञ के द्वारा। बाद में हिंदू ट्रेडिशन में यज्ञ के इंपोर्टेंस कम हुआ, उसके जगह मंदिर मूर्ति माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भगवान के रूप में एस्टैब्लिश करना, जिसको हम कहते हैं पूजा पाठ के रूप में। आजकल आप मंदिर में जाकर ऑफर करते हैं, पहले मंदिर वगैरह होता नहीं था तो यज्ञशाला होती थी, तो यज्ञ में आहुति के रूप में करते थे। तो इस यज्ञ का नाम होता था नव शष्येष्टि। नव कहते हैं नया, न्यू, शष्य कहते हैं हार्वेस्ट, इष्टि कहते हैं यज्ञ। ऐसा यज्ञ जिसमें जो न्यू हार्वेस्ट, जो नया फसल है, उसकी आहुति दी जाती थी। बेसिकली ये दो साल में दो बार ये नव शष्येष्टि यज्ञ होता था। एक तो दिवाली जो करते हैं वो उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, जो हम लक्ष्मी पूजा वगैरह वो अलग चीज है। और दूसरा ये जो होली में जो वसंत में आप करते हैं, स्प्रिंग में करते हैं, तो ऑटम हार्वेस्ट और स्प्रिंग हार्वेस्ट। ये जो स्प्रिंग हार्वेस्ट है उसी को पहले जमाने में होली के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। उसका नाम होली क्यों है अभी जानेंगे। पर ये होता था कैसे, यज्ञ में वो नए फसल की आहुति दे करके परमात्मा को थैंक यू, जिसको आप कहते हैं ना, यहां यूएसए में आप सेलिब्रेट करते हैं थैंक्स गिविंग डे, तो हमारे यहां दो थैंक्स गिविंग डे होते थे, जिसको मॉडर्न फॉर्म में आजकल आप दिवाली और होली के रूप में जानते, और उनके सेलिब्रेशन की दोनों रास्ते तरीके भी अलग अलग थे। वो क्यों थे, वेदर और सीजन के हिसाब से। दोनों में मस्ती होती है, दोनों में उत्सव है, पर दोनों की तरीका अलग है। एक दिया और प्रकाश से, दूसरा रंग और होली से होता था। और इसका नाम होली क्यों पड़ा, वो तो आप किसी को भी पूछे होली क्यों पड़ा, आप स्टोरी के शुरू कर दोगे स्टोरी जी, वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, ये सब चीजें बाद में, ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, मीथ है, जो बाद में हमें जोड़ा, जैसे जैसे हमारी अपनी हिस्ट्री के बारे में, हमारे अपनी पास्ट के बारे में हमारा ज्ञान कम होता गया, तो फिर हमने कहीं ना कहीं ढूंढ के उसको मैच कराने के लिए जो भी मिला उसके साथ एक स्टोरी नरेशन कर दिया। और जब आप किसी भी सच या झूठ स्टोरी को लाखों बार बोलते हैं, लाखों लोगों में बोलते हैं, तो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो होली का प्रहलाद, ये तो जब होलिका और प्रहलाद की स्टोरी लिखी नहीं गई थी तब भी होली खेली जाती थी। होलिका प्रहलाद की स्टोरी पुराणों में आता है, जो मैक्सिमम 1700-1800 साल पुराना है, जब ये पुराण लिखे गए हैं। और होली की जो रेफरेंस हमारे शास्त्रों में मिलता है वो 4000-5000-6000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री मिलती है। तो हम उसमें ज्यादा एकेडमिक डिस्कशन में नहीं जाएंगे, आपकी होली को बर्बाद नहीं करेंगे। पर होली शब्द बनता है होलिका से। होलिका मतलब कोई राक्षसी होलिका नहीं। आयुर्वेद में होलक शब्द का अर्थ होता है जो हाफ बेक्ड ग्रेन होता है, जो नया फसल आता है, वो धान गेहूं बर्ली या जो भी हो, उसको शमी कहते हैं। एक शमी एक तरह की हार्वेस्ट है, वो बर्ली की तरह, उसको हाफ बेक या रोस्ट किया जाता है, और होली के दिन उसी को खाया जाता है या प्रसाद लिया जाता है। जैसे मकर संक्रांति में आप नॉर्थ इंडिया में आप तिल गुड़ मूंगफली चना वगैरह खाते हैं, तो हर, आपको पता है, हर फेस्टिवल में पर्टिकुलर फूड होता है। और वो फूड जो प्राचीन काल में बनाया गया था, उसका जो कनेक्शन था, जो सीजन वेदर, और वो सीजन के हिसाब से जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से। मकर संक्रांति सर्दी की शुरुआत का, या बिल्कुल जहां ज्यादा ठंड का समय है उस समय आप रेवड़ी, वो मूंगफली चने, इस तरह की चीजें खाते हैं जो बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करता है। वसंत में इसकी क्या जरूरत थी, नॉर्मली वसंत जो होता है इसमें, जब वैसे तो जब भी कोई सीजन बदलता है तो बीमारियां होती हैं, है ना। इसको संस्कृत में अपने प्राचीन शास्त्र में कहते हैं ऋतु संधि। ऋतु संधि मतलब एक सीजन से तो दूसरे सीजन आता है तो उन दिनों काफी सारी एलर्जी, कफ, बुखार, ठंड, पेट खराब होना बच्चों के, बड़ों के काफी होता रहता है। तो उन दिनों सबसे ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है कि आपकी खान पान, रहन सहन, ये आप कैसे मेंटेन करें जिससे कि वो जो जब सीजन का जो ट्रांजिशन होता है उसमें आप कम बीमार पड़े, क्योंकि बॉडी को टाइम लगता है उसको दोबारा नए सीजन को कोप करने के लिए। अब जैसे आजकल आप ह्यूस्टन में देखते हैं किसी दिन टेम्परेचर इतनी गर्मी हो जाती है कि आपको एसी चलानी पड़ती है और शाम तक तो फिर आपको हीटर चलाना पड़ता है। चलो यहाँ तो आप एयर कंडीशन घरों में होते हैं तो आप बॉडी को जरूरत नहीं, आप अपने घर के या गाड़ी के टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। जब ये सब चीज नहीं था तो बॉडी को ही तो एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए बॉडी को उसी तरह बना के रखना पड़ता था। और प्राचीन काल में जो इसीलिए जो होलिका का जो सेवन है वो कफ और वात, कफ को कंट्रोल करने, और जो जो स्प्रिंग सीजन में नॉर्मली जो लोगों के अंदर एक थकावट आती है, आप लोगों में बहुतों को फील होता होगा, वो पैरों में दर्द होता है ना, आप किसी को कफ, जुकाम, एलर्जी होती है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, ये मोस्टली स्प्रिंग में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये होलिका को, होलक को खाया जाता है। संस्कृत में इसके लिए आप कहेंगे कि आपने मर्जी से कहीं उठाकर ले आए कोई आजकल वो सोशल मीडिया से, तो इसके लिए कुछ श्लोक आपको आयुर्वेद का रखते हैं। त्रिणाग्निम भ्रष्टार्थ पक्वशमी धान्य होलक। होलक कहते हैं घास पूस के जलाए गए आग में जो शमी या जो हार्वेस्ट जो धान या गेहूं को जब आधा पकाया जाता है, जलाया जाता है, उसी को होलक कहते हैं। तो अर्धपक्वशमी धान्यैः तृणभ्रष्टैश्च होलक, होलको अल्पानिलो मेद कफ दोषश्रमापः। ये भाव प्रकाश जो आयुर्वेद का ग्रंथ है, मतलब तिनके आदियों के आग से जलाए गए या भुने गए, जैसे आप वो मक्का वगैरह भूनते हैं, इसी तरह भुने गए ये जो धान्य है उसको जब हम, उसी को होलक कहते हैं। उसको क्यों खाया जाता है? क्योंकि वात, पित्त, कफ और जो थकावट, इन सबको दूर करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए इसी होलक से होलिका शब्द और होलिका से होली शब्द बना। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है होली का वो है कि सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। अब ठंड कम हो गया, कम होता जा रहा है, गर्मी अभी पूरी तरह आई नहीं है, बड़ा सुहावना मौसम है। और ये सुहावना मौसम सिर्फ आप और हमारे लिए नहीं, अगर आप स्प्रिंग में दुनिया में कहीं भी जाएं, किसी भी कोने में जाएं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, कहीं भी आप जाएं, तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर कोई खिलखिलासा मिलेगा आपको, कलरफुल फ्लावर्स आपको इन्हीं दिनों मिलेंगे और सब जगह मिलेंगे आपकी। तो ये जो कलरफुल, जो आप कलर के साथ खेलते हैं, ये कोई रैंडमली बना नहीं है, ये जो प्रकृति के साथ मैच करा के हम ये फेस्टिवल बनाए जाते हैं। इसी तरह ये स्प्रिंग को सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी जो कलरफुल नेचर है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये होली बनाया जाता है। दैट द डिफरेंट दो रीजन है। और अगर आप होली को देखना चाहते हैं, नेचुरली देखना चाहते हैं, आप बाहर निकल के जाओ, आजकल पेड़ पौधों में पत्ते आने लग जाते हैं, अलग अलग कलरफुल के फूल अब आने लग जाते हैं, इवन घासों में भी फूल जो 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 वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं इन्हीं दिनों। तो नेचर पूरा होली से भरा हुआ होता है। आप रंग ला करके अपने आप को रंगीला बनाते हैं
और नेचर अपने आप रंगीली बनी हुई होती है, और नेचर के साथ अपनी सामंजस्य को, प्रकृति को बनाए रखने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए इसको वसंत उत्सव कहते हैं। प्राचीन काल में हम देखते हैं, अगर जो एंशियन लिटरेचर हम पढ़ें, संस्कृत के, प्राकृत के, पाली के जो लिटरेचर है, जरूरी नहीं कि रिलीजियस लिटरेचर हो, कोई काव्य, कोई ऐसे नॉर्मल सेक्युलर लिटरेचर भी, उसमें हम देखते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसको वसंतोत्सव, कहीं कहीं मदनोत्सव के रूप में सेलिब्रेशन का मिलता है। जनरली ये जो स्प्रिंग है वो यंग कपल के लिए ज्यादा मनोहर होता है। जैसे ऑटम सीजन है, कार्तिक और मार्गशीर मास वगैरह, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए बड़ा अच्छा वो सीजन होता है। इसी तरह वसंत जो है वो मस्ती के, उल्लास के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। उसी को सेलिब्रेट हम वसंत उत्सव के रूप में करते थे। आज भी आप देखेंगे दुनिया में अलग अलग सिविलाइजेशन में, देशों में, कंट्रीज में आप देखेंगे, उनके वहां स्प्रिंग फेस्टिवल अपने ढंग से होता है। तो हमारे यहाँ होली के रूप में होता है, रंगों के साथ और दूसरे चीजों के साथ होता है। और ये सिर्फ एक्सटर्नल कलर की बात नहीं है, इवन हमारे लाइफ में भी जो कलर है उसको भी सेलिब्रेट करने का नाम होली होता है। लाइफ भी तो फुल ऑफ कलर्स है ना, हमारा लाइफ थोड़े ये कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये दुखी है और ये सुखी है, ऐसा नहीं होता है ना। आप रोज या तो हैप्पी या सैड, ऐसे थोड़े होते हैं। लाइफ में हजारों शेड्स होते हैं, आप इसको व्हाइट और ब्लैक में नहीं देखते। यहां वो मैथ नहीं चलता, 1+1 2 होता है या 5+5 10 होता है। लाइफ में तो 5+5 0 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। मतलब पति पत्नी मिलने से 2 होता है जरूरी नहीं है ना, पति पत्नी 2 हैं भाई, 1+1 मिलने से 2 होता है जरूरी थोड़े ही होता है। ये 200 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लाइफ बर्बाद भी हो सकता है, लाइफ आबाद भी हो सकता है, लाइफ नॉर्मल भी हो सकता है। तो लाइफ की मैथमेटिक्स अलग चलती है, लाइफ के कलर अलग चलते हैं, और इसमें सब तरह के हैं, गुस्सा भी है, प्यार भी है ना, इमोशंस भी हैं, 50 तरह के कलर हैं, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, दया भी है, हजारों तरह के कलर हैं, और हम रोज इससे डील करते हैं अलग अलग कलरफुल चीजों के साथ, अपने मन के अंदर, शरीर के अंदर, बाहर के साथ हम डील करते हैं। और इन कलर्स की अपने इंपोर्टेंस है, आप किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल है वो भी प्रॉब्लमेटिक है, जिसके अंदर इमोशन है नहीं वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो हर चीज के अपने एक बैलेंस है। होली में तो यही है ना, हर कलर को आप एंजॉय करते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर कलरों का एक फाउंटेन है, अलग अलग कलर का। कभी कभी दिन में ही आपके 3-4 कलर निकल जाते हैं, है ना, एक ही दिन में आपके 2-3 कलर निकल जाते हैं। सुबह गुस्सा में फाइटिंग करके दुनिया झमड़ा किया, 4 बजे तक आप सॉरी बोलने लग गए, रात को 8 बजे तक प्यार भी हो गया। देखिए 3 कलर तो यही आ जाता है ना। तो ये हमारे अंदर भरे पड़े हैं कलर्स, और ये साल भर में हजारों तरह के कलर्स निकलते रहते हैं। उन कलर्स को जो पहचानता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है और अपने ढंग से कलर यूज करता है, वो तो स्मार्ट हो जाता है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम कम होते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है, लाइफ में प्रॉब्लम तो आता है, पर वो प्रॉब्लम को वो बड़े आसानी से झेल लेता है। और जो स्मार्ट नहीं है वो किसी पर्टिकुलर कलर के साथ चिपक जाते हैं, तो फिर जिंदगी भर पछताते, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशानी का कारण बनते हैं। जो कलर्स के बीच में जो कलर्स की जो डाइवर्सिटी है, उसके बीच में जो बैलेंस बनाना जानता है, अच्छे में भी, बुरे में भी, सही में भी, गलत में भी, वो फिर जिंदगी में आगे बढ़ता है। आपको पता है कि
सारे जो कलर हैं वो व्हाइट कलर से आते हैं, और जो मिल जाते हैं सब कलर को मिला दो तो ब्लैक बन जाते हैं। और हमारे स्पिरिचुअलिटी में व्हाइटनेस जो होता है वो क्लीनिनेस, प्यूरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब आप सारे कलर्स को लाइफ में मिला देते हो तो वो फिर ब्लैक बन जाते हैं, पर वो आते हैं आपके माइंड से। जब आपकी माइंड प्योर हो जाए, प्योर होने का क्या मतलब होता है, जब आप दुनियादारी के ये जो गुस्सा, नफरत, जलेसी, ईगो, इवन जो प्यार होता है ना, ये कोई इसके कारण भी बड़े नुकसान होते हैं जी। हर चीज की बैलेंस जरूरी होता है। जब आप ब्लाइंडली प्यार करते हैं आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, जो ब्लाइंडली प्यार करते हैं बहुतों के साथ आप जस्टिस नहीं करते, क्योंकि किसी से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बाकियों के साथ आप बायस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि प्यार कोई बड़ा रसगुल्ला टाइप का है और उसका अपोजिट खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह कि आप बैलेंस कितना बनाते हैं, और बैलेंस तब बनता है जब आपकी माइंड कूल हो, शांत हो। जिसका मन जितना शांत होगा, थॉटफुल होगा, उसकी कलर्स भी उतने ही मेजर्ड होकर निकलेंगे। और जिसके अंदर हु केयर्स है, ठीक है, कभी कभी आजकल इंडिया में देखते ना वो केमिकल कलर भी लगा देते हैं, वो सालों तक छूटता नहीं है, तो वही केमिकल कलर वाला लगा करके घूमेंगे, जिंदगी भर पछताते हैं। तो सिचुएशन खोली हमारे लिए जो एक मैसेज देता है, कंक्लूड करेंगे, आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे। तो जो कंक्लूजन है कि होली का एक भी लाइफ में, हर फेस्टिवल का एक मैसेज होता है, तो मैसेज क्या है, हर कलर को लाइफ में आने दो। अब कोई भी कलर आता है बिना आपको पसंद भी नहीं है तो भी उस कलर को एंजॉय करना सीखो, हर कलर को इंपोर्टेंस देना सीखो और हर कलर को एंजॉय करना सीखो। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में मत चिपक जाओ, या ये सोच के मत बैठ जाओ कि मुझे तो यही कलर पसंद है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। जब भी तुम किसी पर्टिकुलर कलर के साथ चिपक जाते हो, होली में सबसे ज्यादा तुम्हें ही परेशान करते हैं, है ना। जो कहेगा मैं रंग नहीं खेलूंगा तो क्या होता है, सबसे ज्यादा उसी में रंग लगाया जाता है, या तो छुपचाप भाग जाए, दरवाजा बंद करके बैठ जाए। अगर खुले में है, बोले जी नहीं आई डोंट लाइक द कलर, तो दो सबसे ज्यादा कलर उसी को लगाते हैं। लाइफ में यही थ्योरी है, जब भी आप चीजों को लाइक और डिसलाइक के चक्कर में बहुत स्टबर्न हो जाते हो, तो भगवान की सिस्टम ऐसा है कि जिन आप जितना ज्यादा स्ट्रांगली डिसलाइक फील करते हो वो आपके सामने इतने ज्यादा आते हैं। अब ये एक नेचर है, ये ना हमारे और आपके हाथ में है। इसीलिए जब आप बैलेंस बनाना सीख जाते हो, सुख आए तो झेल लूंगा, दुख आए तो झेल लूंगा, अच्छा आए तो झेल लूंगा, बुरा आए तो झेल लूंगा, जैसा भी होगा हैंडल कर लूंगा। बच्चों को पालना हमारा काम है, बच्चे जैसे भी बन जाए उनसे वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, जब हर कलर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी आ जाती है, देन यू आर एंजॉइंग द होली। जब अभी भी आप स्टबर्न है तो फिर होली में भी आप रोगे। जीवन तो त्योहारों से भरा है, त्योहार का संस्कृत में शब्द है उत्सव, और उत्सव का मतलब होता है मस्ती। वो आप मैटेरियल जगत में है या जो स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं उनकी अपनी मस्ती है, वो अंदर मस्त रहते हैं, हम आप बाहरी दुनिया में ज्यादा मस्त रहते हैं। पर मस्ती में रहना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से गुजारा नहीं चलता। एट द एंड ऑफ द डे हमें खुशी ढूंढनी होती है, हम खुशी के लिए जीते हैं, और ये खुशी नॉन स्टॉप आप जी सकते हैं। जितना बढ़िया होली को समझें, अंदर से समझें, तो आपकी पूरी साल भर में जो कलर आएंगे तो हर कलर को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो परमात्मा करें आपके जीवन में भी होली हो, हर तरह के रंग भरें और हमेशा भरें, और आज की होली भी आपके लिए शुभ हो। परमात्मा करें आप सुखी रहें, हर तरह के रंगों से भरे रहें, इसी विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।